प्रिय भक्तजन, भाइयों बहनों, बच्चों एवं संघ सदस्यों, भगवत भक्त सभी को ये विनित है कि हम आजकल गीता के 13वें अध्याय का अध्ययन करें या स्वाध्याय करें हैं। कल तक हमने 5 श्लोक किए थे। कल हमने देखा था क्षेत्रज्ञ, पिछले 5 श्लोकों में बड़ी अच्छे से व्याख्या की गई है कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। और फिर कल ये भी बताया था कि 5 महाभूत, महाभूत मतलब 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, एक अहंकार, 6 हो गए, एक बुद्धि, 7 हो गए, वो मूल प्रति के उल्पक होती है, 8 हो गए, और 10 इंद्रियों, 8+ 18 इंद्रियों का आपको पता ही है, ज्ञान इंद्रियों का काम है, 1 मन हो गए 19। 5 ज्ञान इंद्रियों कौन कौन सी? ये 16 केवल विकृति है। इस तरह 24 तत्वों का समुदाय का नाम क्षेत्र है। ये शरीर जो है इन 24 तत्वों से बना है। जब हम देखेंगे आगे चल के, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातम चेतना वृत्ति तत्म समासेन सविकार मुदाहितम। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना, संघात मतलब शरीर, चेतना का मतलब प्राण शक्ति और धृति मतलब बुद्धि, इन विकारों सहित क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। मतलब क्षेत्र में शेष में सब कुछ होता है, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, द्वेष भी है, सब कुछ होगा इसमें। अच्छा, भगवान ने 24 तत्व वाले शरीर को तथा इसके 7 विकारों को कहा है। तात्पर्य है कि क्षेत्र से मिला हुआ नहीं है, ये जो शरीर है 24 तत्वों वाला, ये क्षेत्र से अलग है, ये पड़ा है, तत्व से स्वर्था अलग है, फूल सूक्ष्म और कारण ये तीनों शरीर से अलग है। स्थूल ये हार्ड मास का चौड़ा, सूक्ष्म मन वो बुद्धि तंत्र कारण जो हमारे भीतर संस्कार है। अच्छा, कहते हैं कि उनका अहम से समीप महातत्व है, अहम मैं आत्मा, महातत्व से समीप प्रकृति है, प्रकृति भी क्षेत्र में है। तात्पर्य कि हम हमारा स्वरूप ही नहीं है, जो साधक स्वयं को हम क्षेत्र को अलग जान लेता है उसका फिर कभी जन्म नहीं होता, अगर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है किसका, तो ये जान लेता है कि क्षेत्र अलग है, क्षेत्र भी अलग है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, उसका फिर जन्म नहीं होता। श्लोक 7, अमानित्व अमरावित्व अहिंसा शांति राजगम आचार्योपासनम शौचम स्थिर आत्मवीर निग्रह। अपने में श्रेष्ठा का भावना होना, दिखावटीपन न होनी, जो तो वही न होना क्या है कि अपने आप को ऐसा न मान लें कि मैं हूँ सब कुछ, वो फिर है कुछ नहीं और दिखाएंगे लोगों को क्या है। और तीसरा अहिंसा, किसी को दुख नहीं देना, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, द्वार भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना, ये कुछ ऐसे गुण हैं जो ज्ञान के साधन है, उनसे ज्ञान आता है। श्लोक 8, इंद्रिया वैराग्यम अहंकार वचन जन्म मृत्यु व्याधि दुख दोषान दर्शन। इंद्रियों के विषय में वैराग्य का होना, अहंकार का भी न होना, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख दोषों को बार बार देखना, एक दुख का अनुभव होता है और एक दुख का प्रभाव होता है, दुख से दुखी होना और सुख की इच्छा करना दुख का भोग है, दुख के कारण की खोज करके उसको मिटाना दुख का प्रभाव है। यहाँ दुख के प्रभाव को दुख दोषाणु दर्शनम कहा गया है। दुख का भोग करने से अर्थात दुखी होने से विवेक लुप्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात बताई। हम तो सोचते बार बार रोज दुखी होते हैं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा होने वाला है, और फिर सोच सोच के दुखी होते हैं, खुद भी दुखी होते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। इससे क्या होता है, विवेक लुप्त हो जाता है। विवेक क्या है कि हम फिर ठीक और गलत की समझ को खो बैठते हैं। वैसे मनुष्य विवेक दृष्टि से दुख के कारण की खोज करता है, लेकिन असली में होना तो ऐसा चाहिए कि भगवान ने जो हमें विवेक दिया है उसे हमने खोज क्या करनी है कि दुख है क्यों मुझे, उसको मिटाना कैसे है। सुख की इच्छा ही संपूर्ण दुखों का कारण है, कारण के मिटने पर कार्य अपने आप मिट जाता है, सुख की इच्छा मिटने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। मतलब सुख की इच्छा मत रखो, जो होगा बस है। श्लोक 9 असत्यरहित होना पुत्र स्त्री घर आदि में निष्ठ संबंध न रखना और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का अंत्य समझना, चाहे अनुकूल हो समय चाहे प्रतिकूल हो, पर अपना मन जो अपना चित्त जो है वो एक जैसा रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, अनुकूलता में बड़े खुश होते हैं, प्रतिकूलता में डगमगाने लगते हैं। श्लोक 10 मेरी चरण में योगे न चारिणी विविध देशे सेवितम हत जन संसद, मुझ में अनन्य योग के द्वारा व्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति का न होना, ये सब ज्ञान के लक्षण बताते हैं कि विषय मेरे में मन लगाए अनन्य योग के द्वारा। योग होता जुड़ना, अनन्य रूप से मनुष्य भक्त जो मेरे से जुड़े और ऐसी भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति का मतलब हुआ कि जिसमें और कोई आए ही नहीं, केवल मैं ही मैं हूँ, और भक्ति का होना और एकांत स्थान में रहने अकेले रहने का स्वभाव भी होना चाहिए। एक दफा हम बड़े तंग होते हैं वो अकेले अकेले, और जन समुदाय में ज्यादा लोगों में के बीच में बैठने का ध्यान नहीं आना। श्लोक 11 अध्यात्म ज्ञानम नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यद तो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य ज्ञानम, एक और साधन बताते हैं। अध्यात्म ज्ञान क्या है, आत्मा और परमात्मा का विषय ज्ञान जो है वो अध्यात्म ज्ञान है। तत्व ज्ञान के अर्थ परमात्मा को सब जगह देखना, भगवान को कहाँ देखना, सब जगह वो तो ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वो अज्ञान है। बड़ा आसानी से बता दिए, सब जगह परमात्मा को देखना ज्ञान है और परमात्मा को ना देखना अज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान कराने वाले होने से ही इन 20 साधन को भी ज्ञान नाम से कहा गया है। इससे जो विपरीत है वह अज्ञान है। साधना करने से मनुष्य ज्ञान की बातें तो सीख लेता है पर अनुभव नहीं कर सकता, जब तक हम लगा सकते हैं हम कि अहिंसा होनी चाहिए, सत्य होना चाहिए, लेकिन उसको अहिंसा को अपने जीवन में ढालना, सत्य बोलना, ये किसका अनुभव होना चाहिए। अतः साधना करने से ज्ञान क्षेत्रज्ञ में एकता का भाव। ज्ञान क्या है, शरीर और आत्मा को एक ही समझ लेना। अगर ज्ञान के रहते हुए कोई सीख के क्षेत्र बुलाकर विवेचन करता है तो वह वास्तव में अपने दिए अभिमान को ही पुष्ट करता है। अज्ञान मिटाने वो अलग पड़े बड़े बड़े भाषण देने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में, तो वो क्या करता है, अभिमानी हो जाता है, देह अभिमान देह के विषय में अभिमान करता है। परंतु जो ये साधन करता है उसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का अनुभव हो जाता है। लेकिन जो साधन करते हैं उनको क्लियर साफ दिखाई देता है कि आत्मा अलग है, वही हमारा शरीर अलग है। श्लोक 12 तत्वक्षामि ये ज्ञातवा अमित अश्नुते अनादि मत परम ब्रह्म न सत्य न समुच्यते जो गए प्रभु ज्ञान से जानने योग्य है उस परमात्मा को मैं अच्छी तरह से कहूँगा जिसको जानकर मनुष्य मत्ता का अनुभव कर लेता है। ये तत्व अनादि वाला और परम ब्रह्म है, उसको न सत कहा जा सकता न असत्य कहा जा सकता। ये क्या है? ये हम किसको बोला? ये हम बोला भगवान को, परमात्मा तत्व को। और उस परमात्मा तत्व को जब मनुष्य अनुभव कर लेता है वो अमर हो जाता है। और ये देह तत्व जो है ये अनादि भी है और परम ब्रह्म भी है, उसको न सत कहा जाता है न असत। आगे श्लोक 13 सर्वता पाणि पादम तत्सर्वतो अक्षेषु श्वमुखम सर्वतः श्रुति मंडलोके सर्वम अपित्या तिष्ठति। हे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले सब जगह नेत्रों सिरों मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। संसार में सबको व्याप्त करके स्थित परमात्मा के विषय में कितनी सुंदर परिभाषा की है। भगवान श्याम बोलते हैं कि वो जो परमात्मा है उसके तो सब जगह हाथ है। तुलसीदास जी ने एक चुपाई में लिखा है कि बहुत हाथ है और पैरों वाले भी है, भगवान के पैर भी अनेक है, वो नेत्र भी सब जगह है, सिर भी मुख भी जो सब जगह, भगवान के कान भी। और भगवान सबको व्याप्त करके इस संसार में स्थित है, लेकिन हम अभी भी शेष होते हैं। भगवान संसार में नहीं है, संसार से दूर दूर स्वर्ग में या वैकुंठ धाम में। अच्छा, इसके विषय में कहते हैं सोने की गली में किस जगह कौन सा ज्ञान नहीं है। सुनार एक डली में कड़ा कंठी ना तारी अनेक गहने निकाल लेता है। इसी तरह लोहे में किस जगह कौन सा औजार अथवा अस्त्र शस्त्र नहीं है। मिट्टी और पत्थर में किस जगह कौन सी मूर्ति नहीं है। ऐसे ही भगवान में किस जगह क्या नहीं है। बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि एक सोने की डली है उसी से कोई भी गहना बना लेता है सुनार, और लोहे से कोई औजार बना लेता है जो मर्जी, और मिट्टी से भी मूर्तियाँ बना लेता है। तो भगवान सब जगह है। श्लोक 14 सर्व इंद्रिय गुणाभासम सर्व इंद्रिया विवर्जितम असक्तम सर्व निर्गुणम गुण भोक्तृत्व से। ये परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित है और संपूर्ण इंद्रियों के विषय को प्रकाशित करने वाला है। असक्ति रहित है, संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले तथा तो गुणों से रहित है और संपूर्ण गुणों के भोक्ता है, ऐसा है परमात्मा। इसका अर्थ ये हुआ कि एक परमात्मा के सिवाय और किसी की भी सत्ता नहीं है। हम जो कुछ भी कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, यह परमात्मा से भिन्न नहीं है। सब से रहित भी वही है और सब के सहित भी वही है। भगवान की ओमनी प्रेजेंट व्याख्या की गई है कि सब कुछ जो है वो भगवान ही है। श्लोक 15 बहिरंतस्य भूतानं चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् विज्ञेय दूरस्थं चान्तिके चातु। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाद भीतर परिपूर्ण है, चर और अचर प्राणियों के रूप में भी वही है एवं दूर से दूर भी वही है, नजदीक से नजदीक भी वही है। उनके अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में भी नहीं आता है। अब मैं आपको श्री महाराज जी की एक छोटी सी जो बुकलेट श्री अमर सूद जी ने लिखी है उसका अगला प्रसंग कल तक हमने कुछ किया, कुछ पढ़ा, कुछ सुना। रामलाल जी बार बार स्वामी जी के पास जाते हैं, बार बार प्रश्न पूछते हैं कि स्वामी जी ये कैसे ये कैसे ये कैसे। तो जब रामलाल जी ने देखा कि कई बार चाय बनाई और चाय बड़ी कम होती है, महाराज जी कहते हैं दो व्यक्ति आए हैं, रामलाल इनको चाय दे दो, सोचते हैं कि चाय तो आधा कप है, लेकिन वो दो कप निकलाते हैं, फिर कहते हैं कोई आया तो चाय दे दो, फिर दो कप निकलाते हैं। कैसा मनक्कल है, कैसा जादू है। साथियों ने भंडारा वाली बात भी बताई, भंडारा तो चलो उन्होंने भंडारा करना है, सभी आ गए, सामान कुछ नहीं है, कहते जलाओ लकड़ी, चूल्हा बना दिया, पानी रख दिया, आलू लेके एक व्यक्ति आ गया, दूसरा व्यक्ति आटा लेके आ गया और फिर भोजन पका दिया, लेकिन खाने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, इतने में खाने वाला भी आ गया। इस तरह से रामलाल जी प्रतिदिन प्रायः स्वामी जी के पास जाया करते थे और नई नई मेरा मैं नहीं कहूँगी मेरे उनको अनुभव होते थे कि महाराज में कौन शक्ति है, किस शक्ति से वो सब करते हैं। तो जब वो महाराज से पूछते हैं तो महाराज जी कहते हैं, स्वामी जी टोल्ड मी दैट दिस वाज द केस ऑफ माँ अन्नपूर्णा भगवती। तो स्वामी जी ने ये नहीं कहा इतरा कर देखो रामलाल मैं क्या हूँ, क्या कहा रामलाल जिस बाय द ग्रेस ऑफ माँ अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा ही मेरे सब काम बाबा के काम करती है, उन्हीं की कृपा से ये सब भंडारा चलता है। This process continued. Devotees used to visit him, and he offered them tea affectionately, side by side. Where for Vaishno Devi came, and couple of other came also continued. Swamiji never disclosed his identity, nor name, nor any abodes. It was assumed that he belonged to Karnataka because he used to read Kannada books, but at the same time he used to study Sanskrit and English books also. In 1968, it was proposed by the devotees that a case for the lease of land for the temple should be prepared and got sanction. An application was prepared and told Swamiji that it was essential to write his name in the application. The lease will be sanctioned in his name only. क्या किया? लीज उठाकर लीज के लिए अप्लाई करना था, एप्लीकेशन लिखी पर स्वामीजी का नाम लिखना था। स्वामीजी said, Baba's name shall not be mentioned at any here at any cost. The question once again saying, Swamiji, if you do not mention your name, the lease cannot be sanctioned because there is no registered committee for the proposed temple. Swamiji smiled and said, I have no name now. I have shed away everything at all, my identity as such. I have taken the bow to serve everybody. That is to say, I am the servant of humanity and ordained to the will of the Almighty. I have no hesitation to say that I am even servant of servants. So if at all my name has to be mentioned, write my name as Sevak Das, which means the servant of servants. And finally, an application was forwarded in the name of Swami Sevak Das Ji. This was how he came to assume the name of Sevak Das. His actual name and place of birth is still unknown. Later on, then, the new minister advised not to take any place in anybody's personal name because disputes of succession crop up later on and the matter becomes complex. He advised us to continue the expansion work of the temple on the government land, and in due course of time the temple will become a national heritage automatically and nobody will have any objection. The sole purpose of Swamiji in developing the temple by the service of humanity. Swamiji used to say, neither care for the kingdom, nor for heaven, nor for wealth and riches. The only thing I care for is the complete annihilation of the woes and sufferings of the humanity. The service of humanity and the alleviation of their suffering was the foremost ideal of Swamiji. Whosoever came to him was served with purity of heart and utmost love. and care by Swamiji, and whosoever met him was deeply impressed by his love for humanity and his benevolent and magnificent nature. Swamiji laughed. As usual, said, "Why do you worry? Sit down, have a cigarette. Let anybody come on the road as a first atithi and then offer him the meals." He then started the bhandara as proper, whosoever passed by that road. Maharaj requested and offered the meals. In the meantime, the news appeared in the city that Swamiji has started bhandara in Jogi Nala near Vashin. Scores of ladies and gents started coming to the place of bhandara along with ration and provision. Now, intentions were having with us were no exception, so legal utensils were brought from the city and food preparation in Bhandara was started on a larger scale. Buses and vehicles coming from Manali and Kullu were stopped and passengers were requested to take prasada in the Bhandara. Workers in the Bhandara also began to increase the ultimately, the bhandara, which started like a drop in the ocean, began to serve gradually as the time passed. By the afternoon at 3 p.m., long lines were seen taking meals on the river bank and score of workers were preparing and serving the meals. People were so glad to participate in the bhandara, Swamiji sat on a higher place near the flag post is situated these days and kept on smiling on the progress of bhandara. People went to him and touched his feet with almost regard and respect. I was amazed and wonder struck with the grand success of bhandara. This hustle and bustle continued up to 7 p.m. People came continuously by Vrindavanara, took the prasad, touched the feet of Swamiji and went home happily talking about the Vrindavanara in this lonely place. Now it was time for closing the Vrindavanara. The rushing Vrindavanara dwindled and so we also stopped further. The cooking of food, cooked material was almost finished, but some uncooked material, meal, flour, vegetables, potatoes and ghee was also left out. I said to Swamiji, "Maharaji, let us take this remaining material to the temple and close the bhandara." Swamiji became serious, perhaps angry with me. "Hey, what did you bring from my cottage? From the cottage? Tell me." I said, "Maharaji, we brought nothing except utensils because there was nothing to be brought." Swamiji said again, "Then what right do you have to take this permission to my cottage? You wrote only the utensils and only the bare utensils will be taken back to me, the cottage. All the provisions have been brought by the people. All that must be cooked and distributed to the people and then only we shall go back to their cottage barehanded as we came from the cottage." Then the remaining provision were also cooked. At the same time, the last bus from Manali to Shimla came. The bus was stopped and prasada was offered to all the passengers and we also took our meals. The utensils were then cleaned and taken to the temple. The next day, when I came to Swamiji and asked the significance of all this and secret of success of the bhandara, kya pucha Swamiji ji ne? Ye kaise hua kal? Itna bada bhandara kaise hua? Secret mujhe batao, bhed batao. Swamiji smiled and said, kya kaha Swamiji ne? "Look here, Ramlal, this is the law of divine compensation. Ye to bhagwan ka ला है, कानून है, भगवान डिवाइन है, कंपनसेशन है, ये वो हमें देता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हाट एवर यू इन्वेस्ट इन द गुड फॉर ह्यूमैनिटी द ऑलमाइटी विल रीइंबर्स यू दैट अमाउंट इन एनी वे सम हाउ और अदर। ये समझने वाली बात है कि रामलाल जी को स्वामी जी ने क्या समझाया कि ये जो डिवाइन कंपनसेशन का लॉ ऑफ डिवाइन कंपनसेशन है, इसके मुताबिक क्या होता है कि तुम जो कुछ दूसरों की भलाई के लिए लगाते हो, निष्काम सेवा करते हो, तो ऑलमाइटी भगवान क्या करते हैं कि तुम्हें वो उतना अमाउंट रिइंबर्स कर देते हैं, दे देते हैं तुम उससे भी ज्यादा, किसी भी तरीके से कम होगा। इट इज बेस्ट नोन टू द ऑलमाइटी हाउ टू कंपेंसेट। देखिए भगवान कैसे हमें कंपेंसेट करता है, लेकिन हम देना नहीं चाहते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पुअर एंड द नीडी एंड द सेम विल कम बैक टू यू विद इंटरेस्ट। क्या कहा, इसलिए गरीबों में बांटो, अन्न बांटो, कपड़ा बांटो, जो जरूरतमंद को दो, तो भगवान तुम्हें विद इंटरेस्ट ब्याज से वापस देगा। डिस्ट्रीब्यूट लव एंड यू विल गेट बैक लव। अगर आप प्यार देते हो तो तुम्हें प्यार मिलता है इन अबंडेंस, बहुत ज्यादा, मच मोर इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। इट इज द लॉ ऑफ कर्मा, एज यू सो सो शैल यू रीप। इट इज द इटर्नल लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ये लॉ ऑफ कर्म है, जैसा करोगे वैसा पाओगे, और कॉज एंड इफेक्ट भी कारण और कार्य। एज द मॉडर्न साइंस डिफाइंस, आजकल क्या है मॉडर्न साइंस में, जो हम लॉ ऑफ कर्म बोलते हैं, मॉडर्न साइंस क्या बोलती है, कॉज एंड इफेक्ट। सो ट्राई टू डू गुड कर्म, इसलिए अच्छे कर्म करो। बी गुड टू एवरीबॉडी, यू विल रिसीव बैक हंड्रेड ऑफ टाइम। तुम सबका भला करो, तुम्हें हजारों सैसों बार मिलेगा वापस। दैट इज द लॉ ऑफ द लाइफ, द फिलोसफी ऑफ लाइफ, दैट इज द रियल आर्ट ऑफ लिविंग। ये स्वामी जी ने रामलाल जी को समझाया, जो हम सबको समझना है और उसको अनुभूति करनी है और उस पर चल कर दिखाना है। वो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे जितने भी सहयोगी हैं, स्वामी जी के मंदिर के जितने भी भक्त हैं, वो सब में मुझे पूरी आशा नहीं विश्वास है कि हम उस लॉ ऑफ कर्म पर पूर्णतः ठीक उतरते हैं। जब भी हमें किसी निष्काम सेवा का मौका मिलता है, जब भी मैं आप भक्तों को कहती हूँ, तो आप जितना मैं कहती हूँ उसे दुगुना करके दिखाते हैं। अब फिर आगे चलिए, आई आस्क स्वामी जी, रामलाल जी लिखते हैं, आई आस्क स्वामी जी हाउ दिस मिरेकल अबाउट मंडारा टुक प्लेस विदाउट एनी अपेरेंट मींस, विदाउट एनी थिंग इन स्टोर, विद ओनली द बेयर यूटेंसिल्स कैप्ट इन द ओपन ग्राउंड। रामलाल जी ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी मुझे ये जादू बताओ कि भंडारा कैसे हो गया, ना कोई वस्तु थी, ना हमारे पास थी, ना स्टोर में थी, हम तो केवल खाली बर्तन लेके आए थे। स्वामी जी लाफ्ड एंड लाफ्ड फॉर क्वाइट सम टाइम। स्वामी जी काफी देर तक हंसे। देन लुक टुवर्ड्स मी एंड सेड, फिर मेरी ओर देखा और कहा, These are the most secret matters, confidential matters, which can be revealed only to the true devotees. You are too young to understand all this. क्या कहा रामलाल, ये बड़ा ही मोस्ट सीक्रेट मैटर है, जो कि कॉन्फिडेंशियल है, जो कि मैं सबको भावक सभी को नहीं बताते हूँ, केवल कोई ट्रू डिवोटीज होगा उसी को। और तुम तो अभी बहुत छोटे हो, यंग है अभी तो। मेडिटेशन एंड विल पावर कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इवन व्हाट द पीपल थिंक इज इम्पॉसिबल। फिर बताते हैं स्वामी जी की कृपा हो गई, जैसे अर्जुन पर भगवान कृष्ण की कृपा होती है, ऐसे रामलाल जी पर स्वामी जी की कृपा हो गई। और तो स्वामी जी ने बताया कि मेडिटेशन और विल पावर, ध्यान और इच्छा शक्ति, कुछ भी इस दुनिया में कर सकते हैं। जो भी इम्पॉसिबल लगता है वो भी हो जाता है. यू विल कम टू नो लेटर ऑन इफ यू कंटिन्यू मेडिटेशन. तुम्हें पता चल जाएगा अगर आप लगातार मेडिटेशन करोगे. एंड इच सम देयर ऑन द सेम प्लेन वेयर मिरेकल्स हैपन्स. और तुम एक दिन वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ की ये मिरेकल होते हैं. कंटिन्यू योर एडवांस इन द पाथ ऑफ डिवोशन. तो क्या करना कि भगवान के प्रति श्रद्धा रखना. डोंट रन आफ्टर द मिरेकल्स. लेकिन मिरेकल्स पर संत कार्यों को पीछे नहीं दौड़ना. केवल भगवान पर श्रद्धा रखना. ये रामदास जी के माध्यम से स्वामी जी महाराज जी ने हम सबको ज्ञान दिया है कि मिरेकल के पीछे, जैसे कि आज कई बाबा लोग मिरेकल करते हैं तो कुछ लोगों के मिरेकल में फंस जाते हैं. नहीं, हमें क्या करना है, डिवोशन टू द ऑलमाइटी. I always consider Swamiji as my friend, mentor, and guide in life. So I did not insist further to unfold the law of miracles. इसलिए मैंने सोचा छोड़ो, कितना पूछूं स्वामीजी से. My question as to how the miracles happens remained unanswered. मुझे लगा कि मेरा जो मैंने प्रश्न किया था वो तो मेरे को जवाब मिला ही नहीं मिरेकल के बारे में, तो डिवोशन के बारे में ही मिला. Years after years passed on, development work in the temple also continued and progressed well, and my meeting with Swamiji also continued as usual. जैसे ही वैसे वर्ष बीतते गए और मंदिर का कार्य होता गया और मैं स्वामी के साथ लगातार आता रहा उनके पास और बातचीत होती रही. Mahadevi Vaishno Devi Gupha was completed and adjoining temples were also established. In the meantime, Swamiji changed his place of sitting to the adjoining cave where Shankar Gupha is situated. Akhand Dhuna started in the Gupha where statue of Swamiji is established these days. For about 2 or 3 years, Swamiji used to sit there, and during this period, Shankar Gupha was expanded and Shiv Lingam was established there. After a couple of years, temple of Bhagwan Virata Rupa, the Lord of Krishna, was established and a satsang hall was built in front of this temple. I would be appropriate to mention here that Gita Ma adopted the path of renunciation and devotion to the Almighty and left the government service and joined the Mahadevi Tirtha in 1974. It is a long story. How Gita Ma came to the East Devi Ma Sharda of Swamiji. Gita Ma has described in detail all about it in her autobiography. I would like to give her some of my recollections. Swamiji used to come to our house and used to say that Gita Ma is the incarnation of Sharda Ma, whom Swamiji used to worship. In the beginning, we did not believe that it could be so. Swamiji used to say that he searched all over India to find her out, and through continued sadhana and meditation, he found out that Sharda Ma incarnated in Kullu as Gita Ma, and so he used to worship Gita Ma as Sharda Ma herself. Swamiji used to say, Ma, a great temple will be built near Bashing, and my Mother Gita Ma will stay there as a head of the institution. We used to simply laugh, thinking that all this cannot be possible. Who would like to leave the established government service and stay in a lonely place in search of harmony? But the miracle happened, and in 1974, Gita Ma finally decided to resign from the government service in defiance to the advice given by her mother and elder brothers to complete 20 years and get pension and then take up sannyasa. Gita Ma left the house and started living in the small cottage in the temple. not only did she leave the government service, but also she invested all her bank balance and general provident fund in the development of a temple. She became a sannyasi, virtually penniless, and started a life of renunciation. I remember that Mahatma Buddha also did the same action and became a sannyasi innocent. Kingdom, wealth and home life. In both cases, there might be difference of the degree, but there is no difference of kind in action and decision of Gita Ma. To enunciate and live the home life as might as that of Lord Buddha himself. Mahatma Buddha has rightly said to Ashoka the Great, "O Ashoka, in spite of being a mighty king, in spite of your limitless wealth and great kingdom, you are quite a poor man. You are quite empty within your inner self. You can offer nothing to me. You are simply a beggar king. Whereas I, after inciting the kingdom, I am only a beggar in the eyes of the people. But in spite of being a bhikshuk, I am so prosperous with my inner self that I can grant you everything that you ask from me. In that sense, I am the most prosperous beggar." Ye Mahatma Buddha aur Ashoka ki baatchit batayi gayi hai. Ashoka the Great. And Ashoka was so much impressed that he laid down the sword in the feet of Lord Buddha. ज्यादा प्रभावित हुआ अशोका, उन्होंने अपनी तलवार बुद्ध के चरणों में रख दी और लेकिन ये डिसाइपल लेटर ऑन Ashoka did find the spread of Buddhism is well known to everybody who has read the history. Only great men and great minds can take great decisions. Then they have to decide. They became as tough as thunderbolt. But when they are kind, benevolent and merciful, their hearts are so delicate as the finest flowers. ये वर्णन बहुत सुंदर है कि जो महान आदमी होते हैं, ग्रेट मैन होते हैं, उनके डिसीजन भी बड़े महान होते हैं। जब वो कोई डिसीजन लेते हैं तो वो बहुत ही सख्त हो जाते हैं ताकि उनके जो डिसीजन है उनको पूरा किया जा सके। लेकिन जब वो दयालु होते हैं तो वो फूल से भी ज्यादा कोमल होते हैं, फाइनेस्ट फ्लावर। बज्जे की भांति कठोर और पुष्प की भांति कोमल, ऐसे होते महान लोग। दैट इज द क्वालिटी ऑफ द ग्रेट मैन। बाई एंड बाई वर्ता स्वामी जी यू टू से केम टू बी रियलाइज्ड आफ्टर गीता मां शिफ्टेड हर हेडक्वार्टर्स टू द टेंपल, द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ टेंपल प्रोग्रेस्ड बाई लीव्स एंड बोन्स। Many people became devotees of the temple and worked day and night for the development of the temple on all the fronts. In the meantime, Sri Narendraji, who was working in semi-government institution, left the service and became a devotee of Swamiji. He was enunciated as Swami Viveka and interested with the construction work of the temple. He had a very good knowledge of Ayurveda. Later on, he started a free dispensary for the service of suffering humanity. He was also the expert and specialist in acupressure. He started many acupressure centers, namely the Acupuncture Manali Jaidwalpur, and in all India. He cured many patients. Unfortunately, when he was at the height of career, he took Dasmadi in the year of 2002. His Madi has been made adjacent to Swamiji Samadhi. Thakur Das, a young boy, came to Tirth and incited him as Swami Kamal in Sharda Mahasevasam, started work under the guidance of Swamiji. The Yatimvas, the Vandara building, the other temples and Mahalakshmi, Mahasaraswati and Mahakali temple, also these buildings have been constructed under his command and by his sheer hard work, and the development of work of the Mahadevi Kirtha is still going on. The Distance Society, the Sharada Mahaseva Sangha, under the life presidentship of Gita Monk, has been formed for the management of whole temple work. So much so that on the one hand, the development of the temple continued, and side by side, my intimacy with Swamiji also increased day by day. I used to ask Swamiji many questions about the Almighty, the Brahma, the Jeev, and what is Maya. But Swamiji always smiled on my question and said, "Do your duty and do it well." तो क्या करते जब मैं पूछता हूँ रामचंद्र जी लिखते हैं ब्रह्म क्या है अलमाइटी क्या है जीव क्या है माया क्या है तो वो हंस देते हैं और कहते हैं डू योर ड्यूटी एंड डू इट वेल अपना काम करो और अच्छी तरह से करो यू विल कम टू नो एवरीथिंग एट द प्रॉपर टाइम मंडे स्वामी जी वाज इन नाइस एंड ग्रे मूड He brought a book from beneath his pillow and gave to me. The book was written by Swami Shankaracharya, namely The Crested Jewels of Wisdom, the Vivek Chudamani. The book was originally in Sanskrit and English commentary by the translator. He told me to study it and then discuss what is Atma. उन्होंने कहा कि ये विवेक चूड़ामणि पढ़ो और फिर मेरे से डिस्कस करो व्हाट इज आत्मा व्हाट इज डेड एंड व्हाट इज लिविंग इन द इंडियन फिलोसफी व्हाट इज माया क्या इल्यूजन दैट मेक्स द पीपल फील दैट वी आर सेपरेट इन आइडेंटिटी फ्रॉम द ऑलमाइटी उन्होंने बताया कि तब तुम्हें पता चलेगा कि माया क्या है भ्रम क्या है और लोग इस माया में फंस करके ये समझते हैं कि हम ऑलमाइटी से अलग हैं, भगवान से अलग हैं। आई रीड द बुक ट्वाइस बट कुड नॉट अंडरस्टैंड द रियल एसेंस ऑफ माया वो लिखते हैं कि मैंने दो बार ये किताब पढ़ी विवेक चूड़ामणि तो फिर समझ में नहीं आ रहा था कि माया है क्या उसका एसेंस जो था ना एसेंस मतलब जिस्ट जो बीच में सार होता है द यूनिवर्सल इल्यूजन एंड ब्रह्म न माया का पता चला न यूनिवर्सल ब्रह्म पता चला न ब्रह्म का द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस न ही मुझे इन बातों का पता चला द स्क्रिप्चर सेज दैट अवर इंडिविजुअल सोल एंड द यूनिवर्सल ब्रह्म आर वन क्या कहते हैं हमारी जीवात्मा और जो परमात्मा है ब्रह्म है यूनिवर्सल ब्रह्म है वो एक ही है वन एंड द सेम थिंग ओनली द इंडिविजुअल इज अंडर द इल्यूजन दैट ही इज हैविंग ए सेपरेट आइडेंटिटी क्या समझाया कि है तो एक ही लेकिन व्यक्ति क्या करता है भ्रम में आकर माया में फंस कर अपने को अलग मान लेता है After some days, I asked Swamiji, if our soul is a part and parcel of the Almighty, if the individual consciousness and the cosmic consciousness have no difference except that of degree and not of kind, then why don't we realize the cosmic consciousness? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक दिन रामलाल जी ने पूछ ही लिया कि Swamiji, आप मुझे ये बताओ कि हमारा सोल जो हमारी आत्मा जो है वो पार्ट एंड पार्सल मतलब पूरा हिस्सा अंश है किसका ऑलमाइटी माँ भगवान कृष्ण गीता में लिखते हैं ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना प्रत्येक जीव मेरा सनातन अंश है तो इसी पर ये प्रश्न भी बनता है अगर ये व्यक्तिगत आत्मा जो है चेतना जो है और जो ये ब्रह्म की चेतना है अगर उनमें कोई डिफरेंस नहीं है एक अंश है ना जैसे अग्नि है अग्नि की एक चिंगारी है कुछ फर्क नहीं है एक्सेप्ट दैट ऑफ डिग्री डिग्री में हो सकता है چھوٹا چھوٹی آگ بڑی آگ آئی ایم نوٹ کائنڈ لیکن کائنڈ تو ہی ہے قسم تو ہی ہے وہی اگنی وہ ہے وہی اگنی وہ ہے دین وائی ڈونٹ وی ریئلائز دا کوس میں پھر ہم اس غم چیتنا کو کہیں بھی کیوں نہیں یہ انوبھو کرتے ہیں پرشن بہت اچھا ہے اور یہ پرشن ہمارے من میں بھی آتا ہی ہے بٹ کیپس اس اوے فروم سیلف ریئلائزیشن سوامی جی وہ کون سی بات ہے جو ہمیں سیلف ریئلائزیشن انوبھوتی سے الگ کر دیتی ہے دور رکھتی ہے بھگوان کی انوبھوتی سے دین بھائی جی واتما از ہیلپ لیس ویئر ایز دا برہم از آل پاورفل دوسرا پرشن کیا ہے کہ جیو آتما تو ایسے لگتی ہے کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتی ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں کہتے کیا کرے اب ہوتا ہی نہیں ہے لیکن برہم از آل برہم جو ہے جو جیو آتما برہم کا یعنی شاید ہو لیکن برہم کیا ہے وہ تو پاورفل ہے وہ تو سب کچھ کرتا ہے ہم جیو جو ہے ہم تو کچھ کر ہی نہیں پاتے ہم تو ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں Modern science and logic tells us that a part cannot be different from the whole and the part. اچھا پھر کہتے ہیں کہ جو آج کل کی سائنس ہے ماڈرن سائنس اس کا لوجک ہے اینڈ لوجک اور یہ جو نیائے ہے یہ کیا بتاتا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو ایک چھوٹا پارٹ ہوتا ہے وہ بڑے پارٹ سے سارے پارٹ سے الگ نہیں ہوتا ہے However, small it may be must contain the qualities of the whole. چاہے وہ اس کا انش کتنا بھی چھوٹا ہے بہت بڑا پتھر ہے اس کو توڑا اس کا چھوٹا سا اتنا کہ پتھر میرے ہاتھ میں آیا تو میں نے ملایا کہ بڑا پتھر یہ چھوٹا سا پتھر میرے ہاتھ میں آیا یہ تو ایک ہی ہے پھر الگ الگ ہوگی ایسے یہ جیو آتما اور پرم برہم پرمیشور ایک ہی ہے لیکن الگ الگ ہوگی کیسے ہو گیا الگ بیچ میں مایا آ گئی الوژن آ گیا ہماری اچھائیں آ گئی مایا ہی ہماری اچھا جو ہے یہی ہماری کامنائیں جو ہے یہی تو مایا ہے However, small it may be, must contain the qualities of the whole. چاہے یہ کتنا بھی چھوٹا ہو اس کا انش لیکن گن تو وہی ہوتے ہیں جو بڑے بھی ہیں وہی ایسے جو برہم میں گن ہے وہی تو جیو میں گن ہے لیکن جیو ان گنوں کو بھول چکا ہے سپوز وی بریک اے میگنیٹ انٹو 1000 پارٹس اگر ہم کسی چمبک کو ہزار پارٹ میں بانٹ دیتے ہیں کاٹتے ہیں اس کو ایون دین دا اسمالیسٹ پارٹ آف دا میگنیٹ کنٹینز دا سیم پراپرٹیز پھر بھی جو چھوٹا انش ہوتا ہے میگنیٹ کا اس میں بھی وہی گن ہوتا ہے وہ آکرشن ہوتا ہے اس میں بھی چھوٹے میں بھی جو بڑے میں ہے تو چھوٹے میں بھی ہے ایسے جو برہم میں آکرشن ہے وہ ہماری جیو آتما میں بھی ہے اٹ از ہیونگ اے نارتھ پول اے ساؤتھ پول اینڈ دا پاور ٹو اٹریکٹ دا آئرن اس میں ایک نارتھ پول ہوتا ہے ایک ساؤتھ پول کس میں چمبک میں اس لیے کہ آئرن کو لوہے کو کھینچتا ہے سو جیو آتما ایز بینگ اے پارٹ آف دا کوسمک برہم مسٹ کنٹین دا سیم پراپرٹیز اینڈ کوالٹیز اس لیے رام لال جی کہتے ہیں کہ جو جیو آتما میں وہی گن ہے جو اس برہم میں ہے پرماتما میں ہے اور وہی اس میں گن ہے وہی کوالٹیز ہے وہی اس میں آئش ہے ایک ہی جیو آتما اور برہم ہم بول مسلم سوامی جی ٹولڈ می دیٹ آئی واز پروگریسنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن تب سوامی جی رام لال جی نے اپنی انوبھوتیاں سوامی جی کو سنا دی اور اپنے بچار جو انہوں نے انوبھوت کیے تھے تو سوامی جی نے کیا کہا انہوں نے کہا سوامی جی ٹولڈ می مجھے بتایا دیٹ آئی واز کہ میں ٹھیک راستے پہ چل پڑا ہوں دا ریزن وائی وی ڈو نوٹ ریئلائز اوور اون سیلف اوور آتما وچ از ری اسپلینڈنٹ لائک دا رائزنگ سن دیکھو کتنی اچھی بات بتائی سوامی جی نے سوامی جی بتا رہے ہیں پہلے تو رام لال جی نے بتایا سوامی جی بتا رہے ہیں کہ اوور آتما وچ از اسپلینڈنٹ لائک دا رائزنگ سن ہماری آتما سورج آج اب نکلتا ہے رائزنگ سن کی طرح پرکاش مان ہوتی ہے لیکن ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے لائز ان اوور اون ڈیزائرز اینڈ ایمبیشن کیوں ہمارے بھیتر بہت سی اچھائیں کامنائیں پڑی ہیں وین دا انڈیویجل از ڈسٹریکٹڈ بائی دا وائلنس آف ہز اون ویشز اینڈ ڈیزائر دا جینیس اور دا پیور انٹیلیجنس ان ہیم از اینڈ چینج اینڈ کین ناٹ موو تو کیا ہوتا ہے جب جیو آتما डिस्ट्रैक्ट हो जाती है अपने रास्ते से बाई द वायलेंस, हिंसा से, एंड डिजायर्स एंड जीनियस और द प्योर इंटेलिजेंस इन हिम इज अनचेंड एंड कैन नॉट मूव. इट इज ओनली व्हेन द डिजायर्स आर साइलेंट वन रियलाइजेस हिज प्योर सेल्फ. तो स्वामी जी ने बताया कि देखो रामलाल, जब तक हमारी जीवात्मा वो सर्क इसमें पड़ी हुई है, विभागों में बट चुकी है, कामनाओं में इच्छाओं में, तो कुछ नहीं होगा. लेकिन जब हमारी डिजायर कामनाएं इच्छाएं साइलेंट हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी, तो मनुष्य अपने प्योर सेल्फ को, अपने जीवात्मा को ये अनुभूति कर लेता है. द इंटेलिजेंस एब्सोल्यूट द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस क्या अनुभूत करेगा कि मैं एब्सोल्यूट हूँ, मोल इन ऑल, मतलब मेरी जीवात्मा जो है वो इंटेलिजेंट है, कम नहीं है भगवान से, ब्रह्म से. यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल मतलब वसुधैव कुटुंबकम जैसे हम बोलते हैं कि ब्रह्मांड ये चेतना हमारे में आ जाती है. The matter cuts its hands on the souls in the form of desires, and that is the bulk of Maya. क्या होता है, माया करती है कि हमारे भीतर डिजायर की इच्छा में आ जाती है, कामनाओं की इच्छा मन के. टू एंगेज जीवात्मा इन द फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर एंड कैप इट अवे फ्रॉम द रियलाइजिंग इट्स ओन सेल्फ. और क्या होता है कि जब वो सी ऐसी डिजायर इच्छा कामनाएं आ जाती है, तो हमारी जीवात्मा अपने आप को पहचानती नहीं है, अपने आप को रियलाइज नहीं करती है, इसलिए हम अपने आप को ब्रह्म का अंश नहीं समझते हैं. इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू वाई पास माया एंड गो बियॉन्ड द डिजायर थ्रू अवर आत्मा. इसलिए बहुत मुश्किल है कि हम अपनी आत्मा को माया से अलग करें. द सेल्फ इज ल्यूमिनियस शाइनिंग एज ब्राइट एज द सन. हमारा सेल्फ, हमारी जो जीवात्मा वो सूर्य की तरह शाइनिंग करती है, चमकती है. इट इज कवर्ड बाय द लेयर्स ऑफ डिजायर्स, लेकिन ये फिर से ढकी हुई है, उसके ऊपर का मुंगट पड़ा है इच्छाओं का. वन आफ्टर द अदर, सो वी डोंट सी द लाइज ऑफ सेल्फ. बहुत से मुंगट पड़े हैं के बारे कई प्रकार की इच्छाएं कामनाएं हैं, इसलिए हम देख नहीं सकते अपनी जीवात्मा को. द शाइनिंग वन, द यूनिवर्सल लाइट, द प्योर इंटेलिजेंस नोअर एंड द नॉलेज एब्सोल्यूट. इसलिए हम ना तो उस प्रकाश को देख सकते हैं, ना अपनी बुद्धिमता को, ना ही उस भगवान के विषय में जान सकते हैं, क्योंकि माया के रूप में हमारा कई प्रकार का कामनाओं से और इच्छाओं से मन भरा पड़ा है. स्वामी जी गेव एन एग्जाम्पल एंड सेड, Suppose the cosmic light, resplendent light, is covered by the chimneys. अब क्या बता दिया स्वामी जी ने, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है यहाँ पे. एक लालटेन है ना, उसमें चिमनी लगी है, बाय द फाइव चिमनी, पांच चिमनी लगी, जैसे लालटेन एक चिमनी जैसे पांच लगी है, और अंदर वो लाइट जल रही है, जैसे हम जलाते है ना बत्ती. The outermost chimney is made by clay. The pehli chimney lagi na us par, wo clay ki hai, mitti ki hai. Dusri stone ki hai, stone ki hai ya mitti ki hai. See, it is an ideal chimney. Ye hamari chimney kaun si hai? Ye bhumi ki hai. Ye hamara anil kosh hai. Then there is a bottle chimney. Phir hamare paas ek pani ki chimney hai inside it. Then there is a fire chimney. Phir aag ki hai. Inside it, then it is surrounded by a public here. Then it is surrounded by the chimney of space, Akash here. And the light is shining in the space itself. And the light is there, so chimney is about 5 chimneys. We are sitting outside, there were mentioned 5 chimneys. Come by the chimney. We are under the illusion of Maya and want to see the light of Atma and the Self. हम है तो माया के कहीं फंसे हुए और आत्मा के दर्शन में रहते हैं. आई सेड स्वामी जी, काइंडली एलेबोरेट, आई कांट अंडरस्टैंड योर सिंबोलिज्म, इट इज वेरी सब्लाइम. क्या कहते हैं स्वामी जी, मुझे अच्छे से समझाओ, एलेबोरेट करो. आई कांट अंडरस्टैंड योर सिंबोलिज्म, आप जो सिंबोलिज्म दे रहे हैं धर्म सेविंग समय नहीं आ रहा है, आप इट इज वेरी समझाएंगे, बड़ा सूक्ष्म बहुत समझना कठिन है। आज मैं यही करता आपको अगली चीज के बारे में बताऊंगी, रामलाल जी ने कैसे लिखा है और जय माता दी गीता माँ।